نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير محسن انسانیت اس میں سے ہم مکی دور کر رہے ہیں اور آج مکی دور کا لاسٹ سیشن جس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے حال پڑھ رہے ہیں پیج نمبر 221 سے سیکنڈ پیراگراف ہے آئیے دیکھتے ہیں پیچھے ہم نے اس سے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت جملے ہم نے دیکھے کہ جب کسی جگہ ایک انسان کا دل لگا ہو اور اللہ کی خاطر وہ جگہ چھوڑنی پڑے تو دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور ہم اس ہجرت کے سفر میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی ہماری طرح گوشت پوست کے انسان تھے انسانوں میں ان کا مقام اعلیٰ تھا ان جیسے عمل کسی کے نہیں ان جیسا عبادت نہیں لیکن انسانی جذبات میں آپ بھی انسانوں کی طرح تھے آپ کو خوشی بھی ہوتی تھی آپ کو غم بھی ہوتا تھا آپ اداس بھی ہوتے تھے تبھی آپ کے وہ جملے جہاں سے میں آپ پھر دوبارہ بات شروع کر لیتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نگاہ ڈالتے ہوئے مکہ سے یہ خطاب فرمایا خدا کی قسم تو اللہ کی سب سے بہتر زمین ہے اور اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑھ کر محبوب اگر یہاں سے مجھے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا کبھی میں اور آپ بھی سوچیں چند دن کے لیے مکہ جاتے ہیں اور آنے کو دل نہیں کرتا اور جو نہیں گیا وہ تو تڑپتا ہی ہوگا جو آتا ہے وہ زیادہ تڑپتا ہے حالانکہ ہم جیسے لوگ وہاں جا کر بھی اپنے ہی طریقے سے نیکی کے کام کرتے ہیں لیکن جس شخص نے وہیں آنکھ کھولی جس کی بچپن جوانی شادی ہر یاد وہاں تھی ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی تو اللہ کے نبی نے اللہ کے نام پر مکہ کو چھوڑ کر ہم سب کو یہ سبق دیا کہ تمہاری زندگی کی ہر وہ چیز جو مقصد کے راستے میں رکاوٹ بنے اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دو یہی ہم نے قلب سلیم کی علامت پڑھی ہے مجھے اور آپ کو اس وقت اپنے سے یہ پوچھنا ہے کہ اللہ کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کرتی جا رہی ہوں اور اللہ کے نبی نے مکہ چھوڑا ہمیں تو مکہ نہیں چھوڑنا پڑتا آپ نے تو گھر چھوڑا بار چھوڑا اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اللہ ہم سے تو ایسا کوئی تقاضا نہیں کرتا ہمیں تو صرف یہی کہا گیا کہ وقت کو مینیج کر کے اپنے گھروں سے نکلو اور اللہ کے پیارے نبی کی اس سکھائی ہوئی سنت پہ عمل کرو اور اس تحفے کی قدر کرو جو علم کی صورت میں دی اور مردوں کو کہا گیا کہ کم از کم 5 بار تو گھر سے نکلو چھوٹی چھوٹی ہجرتیں کر کے ذرا اللہ کو دکھاؤ تو صحیح کہ تم اس کے لیے کیا کچھ چھوڑ سکتے ہو اور اللہ کے نبی سے مکہ چھٹ گیا چند لمحوں بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے کہاں سے نکلے گھر سے کہاں گئے غار میں یہاں مجھے سورہ کہف بھی یاد آ رہی ہے وہ چند نوجوان جن کو سمجھ آ گیا تھا نا کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اس کا حق مجھ پر سب سے زیادہ ہے وہ بھی گھر کے کمفرٹیبل ماحول چھوڑ کر وہ تو بلکہ ان لیڈز کی اولاد تھے اللہ کے نبی تو اپنے گھر میں بھی کوئی اتنے آرام کے عادی نہیں تھے لیکن وہ بھی نکل کے غار میں گئے تھے اللہ کے نبی بھی غار میں گئے اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایسا فتنوں کا دور آنے والا ہے کہ وہی شخص اپنا ایمان بچائے گا جو جنگلوں میں نکل جائے اور غاروں میں چلا جائے اور اپنا اوڑھنا بچھونا بکریوں کو چرانا کر لے یعنی زندگی کو جتنی سادگی پہ لے آئیں گے اتنا فتنوں سے بچیں گے عام طور پہ تو مشکل ہوتا ہے راستہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا تھا اور عبداللہ بن عریقت اولا کو اجرت دے کر گائیڈ مقرر کیا 3 روز اب غار میں رہے عبداللہ بن ابی بکر رات کو مکہ کی ساری خبریں پہنچا آتے عامر بن فہیرہ جو حضرت ابو بکر صدیق کے غلام تھے بکریوں کا ریوڑ لے کر اسی طرف نکلتے اور اندھیرا ہو جانے پر غار کے سامنے جا پہنچتے تاکہ دونوں مہاجر ضرورت کے مطابق دودھ لے لیں چند لمحے ذرا غور کیجئے گا ابو بکر صدیق خوشی سے رو پڑے پچھلے حصے میں ہم نے سنا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اگر میرے باپ اس دن نہ روتے تو میں کبھی نہ مانتی کہ کوئی خوشی سے بھی روتا ہے کس بات کی خوشی تھی ابو بکر صدیق کو کہ اللہ نے مجھے نبی کا ساتھ دیا اور اس سفر ہجرت میں میں ان کے ساتھ رہوں گا انہی نے سارے انتظامات کیے ہوئے تھے 2 اونٹنیاں پیش کی تو آپ نے کہا کہ میں تحفتاً نہیں لوں گا پیسوں سے لوں گا اس سے سکھا دیا دینداروں کو یہ ادب کہ دین کے کاموں میں نظریں دوسروں پہ نہیں رکھنی जब कोई किसी का एहसानमंद होता है ना, तो फिर उसकी मर्जियां भी माननी पड़ती हैं। ये जो अब्दुल्ला बिन अरीकत है, इनको भी अबू बकर सिद्दीक ने तैयार किया हुआ था, क्योंकि सहराओं में ऐसे सड़कें रास्ते नहीं होते जैसे आज के दौर में होते हैं, तो रास्ता भूलने का मतलब मौत भी होता है, क्योंकि खाना पानी खत्म हो जाएगा तो चले जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लम ने रास्ता तजवीज़ के, यहाँ से एक अमल की बात है, लीडरशिप क्वालिटीज़। आप देखिए, रास्तों पे चलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, रास्ते बताने वाले थोड़े होते हैं। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा में जिसकी कमी है ना, वो लीडर्स की कमी है। ये बिखरी हुई उम्मत जो आज बिखरे हुए मोतियों के दानों की तरह तस्बीह के बिखरी हुई है ना, दुआ करें हमें एक अच्छा लीडर मिल जाए, ऐसा ही लीडर मिल जाए कि जो काल अल्लाह और काल रसूल पे अमल करे। इंशाल्लाह इस उम्मत में खैर बहुत है, और अल्लाह के नबी ने रास्ता चूज़ किया। यहाँ आपको पीछे थोड़ी सी मैंने वजाहत की थी कि आपने लंबा रास्ता ढूंढा ताकि लोग उस रास्ते पे ना जा सकें जिस पे आप जा रहे हैं और आपकी जान को खतरा ना हो। तो इससे पता चलता है कि बास चीज़ें आम नज़र से देखने में अजीब लग रही होती हैं, लेकिन उसकी हिकमत मालूम होती है उनको जो ये रास्ता चूज़ करते हैं। 3 रोज़ गारे सौर में रहे, यहाँ आपके लिए सिर्फ एक ही जुमला है, लेकिन आपने इस बारे में बहुत कुछ सुना होगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक रात चांदनी रात थी और सितारे चमक रहे थे, बिल्कुल बगैर बादलों की रात थी, तो आसमान पे नज़र डालती हैं और सितारों से भरा हुआ आसमान, यहाँ ये याद रखिएगा, सहराई इलाकों का आसमान बहुत साफ होता है क्योंकि बादल नहीं होते, अंधेरा बहुत होता है, तो सितारे चमक रहे थे। तो आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी, कोई ऐसा भी शख्स है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों जितनी हो? अच्छा, यहाँ से ज़रा आयशा की उम्र भी जहन में रखिए, 12-13 साल की होंगी तकरीबन, और शऊर कितना पुख्ता है। आज की कोई औरत होती कहती किसी के पैसे इतने हो, किसी की दौलत इतनी, क्योंकि जो चीज़ जहन पे पड़ी होती है ना, उसी को बंदा नापता है। तो दुनियादार लोग दौलत को नापते हैं, दीनदार नेकियों को नापते हैं कि मेरी नेकियां कम हो रही हैं या ज़्यादा। अच्छा, दिल में ख्वाहिश क्या थी कि देखना अल्लाह के नबी मेरे बाप का नाम लेंगे। पता होता है ना, जिन्होंने कुर्बानियां दी होती हैं उनको पता होता है। लेकिन जवाब जो आया वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। कहा, हाँ आयशा, उम्र की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है। तो दिल बुझ गया, कहा अल्लाह के नबी मैं तो सोच रही थी कि आप मेरे बाप का नाम लेंगे, तो आपने जो जुमले बोले वो इस मौके पर लिख लीजिए। कहा आयशा, तू अबू बकर की नेकियों की बात कर रही है और आसमान के सितारों को मेयार बनाती है, उमर की तो सारी जिंदगी की नेकियां अबू बकर सिद्दीक की उन 3 रातों की नेकियों के बराबर भी नहीं जो उन्होंने मेरे साथ गारे सौर में गुजारी। क्या किया होगा भला, बना के तस्बीह नमाज पढ़ी होगी ना, कोई लंबा सा वजीफा किया होगा, गार में गए क्या किया होगा, मुश्किल हालात में दीन का साथ दिया। नबी के जिस मिशन पे चले उसको मौत की कीमत पे कबूल किया, 100 ऊंटों की कीमत लगी भी अबू बकर की जान पे भी और अबू नबी सल्लम की जान पे भी, कि जिंदा या मुर्दा ले आओ और 100 ऊंट मिलेंगे। कितने लोगों ने आपका पीछा किया, और उसी में एक सहाबी का वाकया आपको सुनाया गया पीछे, कैसे अल्लाह के नबी को उन्होंने कहा कि मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं थी, न्यूट्रल लोग थे उस दौर भी, मैं तो 100 ऊंटों को पाने के लालच में आपके पीछे गया था। नाम याद है आपको, बीसियों बार हमने तफसीर में और रही को मख्तूम और अल्हम्दुलिल्लाह तजलियात नबूवत में उनका नाम पढ़ा। अब आपका क्विज इसी तरह ही होना है जी, सुराका बिन मालिक। सिर्फ कीमत लेने के लिए आ रहे हैं और बार बार उनका घोड़ा जो है उसके पांव जमीन में धस रहे हैं, और तीसरी दफा जब ऐसा हुआ तो कहा मैं समझ गया कि आप अल्लाह के रसूल हैं और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बाज़ दफ़ा लोग दुश्मनियों के इरादे से आते थे, इस्लाम लेके जाते थे। तो ये वो वक्त था जिस वक्त अबू बकर ने आपका साथ दिया, और गार के बारे में भी आता है, पुराना गार चूज किया आपने। अबू बकर कहते हैं अल्लाह के नबी आप ना अंदर जाइएगा, पुराना गार है, पता नहीं अंदर सांप बिच्छू ना हो, मैं पहले जाके देखूं, और अगर आपको इत्तफाक हो और अगर अल्लाह आपको हज उमरे पे ले जाए जरा जाके तो देखिएगा। इतनी ऊंची गार है, यकीन ना आए, मैं वहां खड़े होकर सोच रही थी, तकरीबन आपकी उम्र मुबारक 53 साल थी उस वक्त, 53 ईयर्स की, आप चढ़े कैसे होंगे इस पहाड़ पे? मक्का से पीछे जद्दा की तरफ जाएं, फिर गारे सौर आती है, और अबू बकर ने अपने हक के मुताबिक उन्होंने गार को साफ किया। छोटी छोटी धजियां डाल दी सुराखों में, पुराने गारों में कीड़े मकोड़ों का और इस तरह की मुझी चीजों का डर होता है। कब आप तशरीफ लाए, सफर की थकन भी थी, आप लेटे और आपकी आंख लग गई। अबू बकर सिद्दीक की रान है और नबी का सर है, तकिया बनाए, थके तो अबू बकर भी थे लेकिन नजर आता है कि उनको मिशन से प्यार था तो मिशन वाले से भी प्यार था। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख कब खुली, जब अबू बकर के आंसू टप टप आपके चेहरे मुबारक पे गिरे। क्या हुआ? कहा के नबी आप सो गए थे तो वो फलां सुराख है उसके अंदर मैं कपड़ा देना भूल गया, थोड़ी देर बाद वहां से सांप निकल आया या कोई मुझी कीड़ा, तो मैंने इस ख्याल के तहत कि आपकी आंख ना खुले मैंने उधर अपना अंगूठा दे दिया पाँव का, और वो मुझे डसता रहा लेकिन अब जब दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो मेरे आंसू निकल गए। अबू बकर आपने क्या किया? फिर आपने अपना लुआबे मुबारक लगाया तो अल्लाह ने ठीक किया। ये बात आज कहनी आसान है, यहाँ बैठे एक औकड़ो जा जाए ना तो फिर देखें हम कहाँ जाते हैं। कभी आप और मैं सोचें, अल्लाह को मेरी आपकी नमाजें, रोज़े, हज, लंबी तस्बीहात, हमारे मुराकबे, ये चीज़ों के अल्लाह ने क्या करना है? अल्लाह ये देखता है कि लियुसखिरा खुला दीन कुल्लिही वलव करिहल काफिरून। आप अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए क्या करते हैं? और ये बहुत बड़ी नेकी है आज के दौर की। अभी आपने आयतें सुनी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी वरहमा बैनहुम। तो याद रखिए नेकी एक ही होती है, बात तो वक्त वक्त की है। कभी आपको $100 की भी परवाह नहीं होती क्योंकि जेब में 500 रखा हुआ है, और कभी $1 जिसको लेकर आप बस पे जाके सफर कर सकें वो भी बड़ा कीमती होता है, या $1 का एक बोतल पानी की निकाल लें जो आपको सुकून दे। तो आज के दौर की सबसे बड़ी नेकी क्या है? अल्लाह के नबी के इस दीन को फैलाना। क्योंकि आज जहालत की बात है, अभी मैं एंड पे इंशाल्लाह इशारतन फितनों का जिक्र करूंगी जिससे आज उम्मत शिकार है। बहरहाल गुजर गई वो नेकी और अबू बकर ने वो मुकाम ले लिया, सो ले लिया। आप पूरी मक्की और मदनी जिंदगी पढ़ लें, ये नहीं कभी हुआ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हों और अबू बकर ना हो, ये नहीं कभी हुआ। हत्ता के मेराज का सफर जो इससे पीछे चंद सेशन पहले सुन चुके हैं, उस मौके पे भी रिवायात में आता है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर चले गए, और बल्कि जहां तक जिब्राइल ने आपको छोड़ दिया, सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं जा सके, तो वहां अल्लाह के नबी ने अबू बकर को देखा। अबू बकर आप किधर? पता चला कि अल्लाह ने एक फरिश्ते की शक्ल अबू बकर की बना दी कि यहां मेरा नबी अबू बकर को मिस ना करे। आदत हो जाती है साथ रहने की ना। अबू बकर के बारे में तो लोग कहते हैं कि सारी दुनिया मिल जाए अबू बकर का मुकाबला नहीं कर सकती, कि जिंदगी में भी साथ थे, यारे गार भी कहते हैं, तो आज भी कब्र साथ है। एक तरफ अल्लाह के बीच में नबी हैं, एक तरफ अबू बकर हैं, और दूसरी तरफ हजरत आयशा ने अपने लिए कब्र की जगह रखी हुई थी अपने हुजरे में, लेकिन उमर फारूक ने उनको मुश्किल में डाल दिया। जब जख्मी हुए पैगाम लिख के भेज दिया उम्मुहातुल मोमिनीन आयशा, आप मुझे ये जगह दे दें क्योंकि मैं अपने नबी के साथ रहना चाहता हूँ। तो आयशा कहती हैं जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी लेकिन मैं उमर को अपने से अहमियत देती हूँ, और आपने अपनी जगह छोड़कर उमर को दे दी। तो ये कुर्बानियां जाया नहीं जाती। आज जितने लोग रोजे पे जाके कहते हैं ना कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आली मुहम्मदिन, साथ ही साथ अबू बकर और उमर पे भी सलाम पढ़ते हैं। आमतौर पे कभी नहीं आपने पढ़ा होगा, वहां जाके सलाम करते हैं, या अबू बकर अस्सलाम अलैकुम, या उमर अस्सलाम अलैकुम। कौन कहता है ये नेकियां जाया होती हैं? नहीं होती। और हिजरत की राहें थी, ये कोई आसान बात नहीं थी। अल्लाह अकबर। और आज आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो मक्का से मदीना जाने का रास्ता है ना, इसको तरीकुल हिजरा कहते हैं। लिखा होगा, आप जाएंगे देखेंगे, अल्लाह आपको ले जाए। हमें खुद उन्होंने बताया, जब हम गए तो हमारे साथ कुछ वहाँ के लोकल स्कॉलर्स में से भी थे, उन्होंने कहा कि अगर आज भी चाहें हुकूमत तो मक्का से मदीना का शॉर्ट रूट ढूंढ सकती है, लेकिन उन्होंने वो रास्ता चूज किया जिस पे नबी सल्लम गए थे। और जो मेरे दिल की कैफियत थी मक्का से मदीना जाते हुए, अगर आपने शेयरिंग सुनी हो तो सुन के देखें, पिछले साल फरवरी मार्च में 2 दफा हमें इत्तेफाक हुआ था ग्रुप के साथ जाने का। यकीन करें एक एक कदम पे मुझे अल्लाह के नबी और अबू बकर याद आ रहे थे, और मैं सोच रही थी इन राहों से गुजरे थे, और ऊंट पे और घोड़े पे, और गर्मी और प्यास, और हम तो इतनी मजे की गाड़ियों में और मजे करते हुए जा रहे हैं। तो जो मेहनत कर गए वो कर गए, आज उम्मत अगर उतनी भी कर ले तो बड़ी बात है। लेकिन अल्लाह के नबी 3 दिन रहे, और आमिर बिन फुहैरा को भी अबू बकर ने नॉमिनेट किया। देखिए जिन्होंने जाना होता है वो तैयारियां करके रखते हैं, वो ये नहीं कहते अच्छा सोचते हैं, सोचने लगे कभी नहीं करते। डबल माइंडेड लोग तो कभी कोई काम नहीं करते, और वाकई यही हुआ। सारा दिन आप वहां रहते, रात होती तो ये दूध लेकर आते बकरियों का पीते। कोई सोचे तो सही ना, 3 दिन क्या पिया होगा दूध, और वो इतना सा दूध पी के भी उनका पेट भर जाता था। और जिन कदमों से वो खुद गुजर के आते थे उस पर बकरियों को चरा देते ताकि खोजी हमारे पाँव के निशान ना देखें। खैर पीछे क्या हो रहा है। इधर कुरैश ने नबी सल्लम के मकान का मुहासरा रात भर रखा और पूरे शहर की नाकाबंदी का कड़ा इंतजाम भी किया, मगर जब अचानक इनको ये मालूम हुआ कि जिसकी तलाश थी वो तो निकल गया। रिवायत में आता है ना कि आप सूरज यासीन की वो आयतें पढ़ते हुए जा रहे थे कि वजालना मिन बैनी ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फख्शैनाहुम फहुम ला युबसिरून। हमने उनके आगे भी और उनके पीछे भी एक दीवार डाल दी और उनको नजर नहीं आता। बीच में अल्लाह के नबी गुजर गए और अल्लाह ने उनकी नजर पकड़ ली, क्योंकि नजर किसकी है, अल्लाह की गुलाम है। अल्लाह चाहे तो नजर देखे, ना देखे तो ना देखे। और हजरत अली को अपने बिस्तर पे सुला गए, और जब बाहर निकले और देखा और बाद में पता चला वो अली हर रजी अल्लाह तआला ने, तो उनको बड़ा गुस्सा आया। यहाँ हजरत अली की भी शान देखिए, उस रात कत्ल किए जा सकते थे। बल्कि आपको पता है कि जो पीछे हम पढ़ चुके हैं शाबे अबी तालिब की रातें थी, तो उसमें अबू तालिब खुद सोते थे अल्लाह के नबी के बिस्तर पे, कि कहीं रात के अंधेरे में कोई आके मारे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह मुझे मार दे। इंसानी मोहब्बत बहुत थी, मिशन से प्यार नहीं था, अल्लाह के नबी के रस्तों से प्यार नहीं था, तड़प नहीं थी। उस शख्स को क्या लगी हुई है, क्यों जा रहे हैं मक्का से मदीना, आला बिजनेस के लिए, कोई वहां अच्छी ऑप्शंस नजर आ गई हैं, नहीं कुछ भी नहीं। ये भी नहीं पता आगे जाके होना क्या है, ये तो जो हुआ वो तो हमें आज पता है, उनको तो नहीं पता था। लेकिन जिनको निकलना होता वो फायदा नुकसान नहीं देखते, वो निकल पड़ते हैं। अब क्या हुआ, तलाश के लिए चारों तरफ आदमी दौड़ाए, कुछ पता ना चला। एक गिरोह दौड़ धूप करते हुए ऐन गारे सौर के दरवाजे पर आ पहुंचा। इनके कदम अंदर दिखाई देने लगे। आप जाएं अगर तो देखिएगा, गारे सौर ऐसे है। नॉर्मली हमारे जहन में क्या आता है कि यूं पहाड़ और गार अंदर जाके देखेंगे, वो गार नीचे है। जैसे आप वहां जाके ना, तो फिर नीचे स्टेप उतरते हैं तो अंदर गार है, तो अब नीचे अब अल्लाह के नबी और उमर है और ऊपर से लोग गुजर रहे। अबू बकर कहते हैं ऐसा भी वक्त आ गया था कि वो ऊपर से गुजरने लिए नीचे देखते थे, हम नीचे थे, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। इनके कदम अंदर दिखाई देने लगे, कितना नाजुक तारीखी मरहला था। हजरत अबू बकर सिद्दीक को तश्वीश हुई कि अगर ये लोग गार में दाखिल हो गए तो गोया पूरी तहरीक खतरे में पड़ जाएगी। इसको नोट करें, अबू बकर ये अल्लाह के नबी का दिफा नहीं कर रहे थे, इस्लाम का दिफा कर रहे थे। उनको पता था इस नाजुक लम्हे में अगर अल्लाह के नबी को कुछ हो गया तो इस्लाम की तो तारीख बनने से पहले मिट जाएगी। अभी तो बेचारी नन्नी नन्नी कौंपलें थी ना, इन्हीं आयतों में आपने सुना कि हर सहाबी एक छोटी सी कौंपल थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता खेती बनती गई। तो अबू बकर को फिक्र थी दोहरी लगी हुई, एक तरफ तो नबी का प्यार, दूसरी तरफ इस्लाम का खतरा। ऐसे लम्हात में सही इंसानी फितरत के अंदर जैसा एहसास पैदा होना चाहिए, ठीक ऐसा ही एहसास जनाबे सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो का था। मगर चूंकि रसूलुल्लाह के साथ हक ताला के कुछ वादे थे, इसकी तरफ से हिफाजत और नुसरत की यकीन धानी थी, इसलिए पर्दा गैब के पीछे तक देखने वाला दिल जानता था कि अल्लाह हमें सही सलामत रखेगा। इसको नोट करें, आम लोगों को वो चीजें नहीं दिखती जो लीडर्स को दिखती हैं। आप देखिए, घर में माँ होती है ना तो सब ठीक चल रहा होता है, जरा माँ इधर उधर हो ना तो क्योस ही पड़ा हुआ है। फिर आते ही माँ को कोई फोन करो, कहते फिक्र नहीं करो सब है, आराम से बैठो। इसी तरह अल्लाह के नबी की जो हैसियत थी ना उम्मत के लिए, वो एक लीडर की थी। आपको पता था कि अल्लाह मुझे इन दुश्मनों के हाथों से नहीं मरवाएगा, ये अल्लाह का वादा था, क्योंकि अल्लाह ने बड़े लंबे वादे किए हुए थे। और वैसे भी ईमान अमन देता है, मुश्किल हालात में आप पैनिक हुए बगैर अगर जम गए ना तो मुबारक हो आपको कि आपके अंदर ईमान है। आपके मेरे ईमान की चुगली हमारी हालत खाती है, हर वक्त परेशान हौल रहे हैं, हाय हाय हाय, ईमान की कमी है। क्या कुरान में आते, सूरत यूनुस में, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, कौन है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वली वो हैं जिन पे कोई खौफ और हुज़न नहीं होता। तो यही हुआ, आप बड़े मुतमईन थे। फिर भी ठीक इसी तरह वही सकीनत नाजिल हुई जैसे मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। क्या, ला तखफ, दोनों का जिक्र कुरान में मौजूद है, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ये सूरत जुबानी याद होनी चाहिए अब आपको, सूरत तौबा का हिस्सा है। वो घबरा रहे थे क्या होगा, तो आपने कहा तुम क्यों फिक्र करते हो उन दो की जिनके साथ तीसरा अल्लाह है। सूरत तौबा की आयत 40 है ये, फिक्र न करो अल्लाह हमारे साथ है। चुनाचे आने वाला गिरोह गार के धाने से ही वापस लौट गया। تین روز غار میں رہنے کے بعد جناب صدیق اکبر کی معیت میں اپنے رہبر اور عامر بن فخیرہ کو لے کر نکلے. تعاقب سے بچنے کے لیے, یعنی دشمن آپ کا پیچھا نہ کریں, عام راستہ چھوڑ کر ساحل کا لمبا راستہ اختیار کیا گیا. ادھر مکہ میں اعلان کیا گیا کہ دونوں مہاجروں میں سے جس کسی کو بھی کوئی شخص قتل کر دے یا گرفتار کر لائے اس کے لیے 100 اونٹوں کا انعام ہے. لوگ برابر تلاش میں تھے. سراقہ بن مالک بن جاشم کو خبر ملی کہ ایسے ایسے دو آدمی ساحل کے علاقے پر دیکھے گئے. اس نے نیزہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے. قریب آ کر سراقہ جب تیزی سے جھپٹے تو اس کے گھوڑے کے اگلے پاؤں زمین میں دھس گئے. سراقہ نے 2-3 بار کی ناکام کوشش کے بعد عف چاہی, یعنی کہ مجھے معاف کر دیں. نیز درخواست کی کہ ایک تحریر امان لکھ دیجئے. گویا اس نے یہ بھی محسوس کر لیا کہ ان ہستیوں کے طوفیل ایک نیا دور نمودار ہونے والا ہے. اس کو ہائی لائٹ کریں. یہ ابو بکر اور اللہ کے نبی ایک نئی تاریخ بنا رہے تھے. ایک نیا دور تھا, انسانیت ایک دوسرے دور میں داخل ہو رہی تھی. امان لکھ دی گئی اور فتح مکہ کے دن کام آئی. اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو ایک بشارت بھی دی کہ سراقہ, اس وقت تیری کیا شان ہوگی جب تو کسرا کے کنگن پہنے گا. آپ کو تو مردوں پہ سونا حرام ہے, سراقہ کی ایکسیپشن ہے. اور یہ پیشن گوئی حضرت عمر کے دور میں فتح ایران کے موقع پر پوری ہوئی. شاید کہتے ہیں 14 کلو سونے کے کنگن آئے تھے کسرا کے, تو صحابہ نے بغیر کسی تردد کے مال غنیمت میں سے نکال کے سراقہ کو دے دیے, کیونکہ اللہ کے نبی کہہ کر گئے تھے کہ کسرا کے کنگن سراقہ پہنے گا, باقی بانٹ بعد میں ہوگی. یہ دل ہوتے ہیں دین والوں کے, وہ یہ نہیں کہتے ہمارا حصہ کدھر ہے, لو اب تمہیں دے دیں, چلو چلو. نہیں دیے. اور آپ کو پتا ہے سراقہ کبھی بیچ میں بیمار ہوئے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عمر کے دور میں, تو لوگ غم کرتے تھے نا, آپ بیمار ہے, کہتے تھے میں نہیں مروں گا ابھی. یہ یقین ہے, یقین محکم. کیوں نہیں مریں گے؟ کہا اس لیے کہ ابھی کسرا کے کنگن ہی نہیں پہنے. اور جو ہی یہ کنگن پہننے کی بات پوری, اس کے تھوڑے عرصے بعد سراقہ کا انتقال ہو گیا. ان کو یقین تھا موت کی طرح کہ محمد نے جو کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ پتھر پہ لکیر ہے. آج امت مسلمہ کو یہ یقین آ جائے نا تو ساری دنیا ہم سے ڈرنے لگ جائے یا ہم سے پیار کرنے لگ جائے. بہرحال اس سفر میں حضرت زبیر کاروان تجارت کے ساتھ شام سے واپس آتے ہوئے ملاقات ہوئے, یعنی ان کی ملاقات ہوئی. زبیر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. کون تھے آپ کے حضرت زبیر؟ کون تھے جی؟ پھپھو کے بیٹے تھے آپ کی. اور وہ مدینہ سے واپس آ رہے تھے, شام سے آ رہے تھے, تو رستے میں وہ ایک ہی روٹ ہے, آپ ادھر سے جا رہے تھے. انہوں نے حضور اور حضرت صدیق کے دونوں کی خدمت میں سفید لباس ہدیۃً پیش کیا, یعنی تحفے میں کپڑے دیے آپ کو. اس سفر میں بریدہ اسلمی بھی 70 ہمراہیوں کے ساتھ سامنے آئے. یہ بھی در حقیقت انعام کے لالچ میں نکلے تھے. جب سامنا ہوا تو بریدہ کے دل کی کایا پلٹ گئی. اللہ ایسے دل بدل دیتا ہے. دعا کیا کرے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. کہ اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد نہ بھٹکانا. اور تھوڑے بھٹک رہے ہیں, ہم نے پڑھ کے بھٹکنا ہے, ہم نے پڑھا کے بھٹکنا ہے, ہم نے نبی کی امت بن کے بھٹکنا ہے, تو پھر ہم سے زیادہ کس کے حال پہ افسوس ہوگا. لیکن آپ دیکھیے, گھر سے آئے تھے انعام کے لیے, آپ کو ملے, دل کی کایا پلٹ گئی. تعریفی گفتگو ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ بشارت, کیا؟ خرج سہمو کا, تیرا حصہ نکل آیا فرمایا. تو بریدہ سمیت 70 ساتھیوں کے ایمان لایا. پھر بریدہ نے یہ خواہش کی کہ حضور مدینہ میں داخلے کے وقت آپ کے آگے آگے ایک جھنڈا ہونا چاہیے. آپ نے اپنا امامہ نیزے پر باندھ کر بریدہ کو دیا اور اس جھنڈے کو لہراتے ہوئے یہ قافلہ دار الحجرت میں داخل ہوا. تو اللہ نے سورۃ آل عمران 186 میں سچ کہا ہے نا کہ لازمن تمہاری جانچ پرتاڑ کی جائے گی جانوں اور مالوں کے ذریعے, اور تم کو بہت سی بےہودہ باتیں سننی پڑیں گی ان لوگوں سے بھی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی, اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کا مسلک اختیار کیا. اور اگر تم انہیں آزمائشوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور آلودگیوں سے دامن بچا بچا کے چلو تو یقیناً ایک کارنامہ ہمت ہے. وَلَتُبْلَوُنَّكُمْ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسَكُمْ, تو آپ دیکھیے کہ یہ تھا آپ کا مکی دور. اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہمیں وہ تڑپ لگ جائے, وہ سوچیں. اب یہ مکی دور تو ہم نے پڑھ لیا, مجھے آپ کو اس سے کیا ملے؟ تو آئیے ذرا تھوڑا سا اس پہ دیکھتے ہیں. ابھی تو میں مختصراً بات کروں گی, لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم ایک فل پورا کورس کریں گے اس موضوع پہ کہ فتنوں کے دور میں, جو بھی آج کے دور میں ہمیں فتنے ملتے ہیں, نبی کی سنتیں کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے، لیکن آج اس وقت جو چیز میں آپ کے اپنے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے معاشروں میں دکھتی ہے اس کا تذکرہ کروں گی کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ پیاری امت جس کے لیے اللہ کے نبی نے اتنی دعائیں کی، اتنی قربانیاں دیں، اور جس کو قرآن کہتا ہے کن تم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جن کو اللہ نے لوگوں کے لیے پیدا کیا، آج وہ امت فتنوں کا شکار ہے۔ لفظ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ فتنے کو دیکھیں تو میں آسان سی تعریف کر رہی ہوں، میں مشکلات میں نہیں ڈالوں گی آپ کو، صرف سوچنے کا پوائنٹ دیتی ہوں۔ ہر وہ نعمت جو اصل میں نعمت ہو لیکن اس کا غلط استعمال اس کو آزمائش بنا دے۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ عربی زبان میں بھٹی میں دھات کے ڈالنے اور اس کو پگھلانے اور اس کا کھوٹ الگ کرنے کو فتن کہتے ہیں۔ تو فتنے کیا ہوتے ہیں؟ آزمائشیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ مکی دور میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہت سارے عمل دیکھے، اگر آپ اس کو سامنے رکھیں تو آپ کے ذریعے سے مکہ میں ایک بہت بڑا جھگڑا ختم ہو گیا، اور وہ کیا تھا یاد ہے آپ کو؟ حلف الفضول، حجر اسود کی تنصیب کا موقع۔ آپ نے مکہ میں اپنے مکی دور میں، بلکہ نبوت سے بھی پہلے کے دور میں لوگوں کو دکھا دیا تھا وہ حل جو آج امت کو چاہیے۔ میں بہت سارے فتنوں کی اس وقت بات نہیں کروں گی، لیکن ایک فتنہ جس نے آج پوری امت کو ٹکڑوں میں بانٹا ہوا ہے، اس کی بات پہ آپ کو ایک چھوٹی سی شیئرنگ سناؤں گی، آپ خود سمجھ جائیں گے کہ آج کے دور کا مسلمانوں کا مسلمانوں کے ہاتھ سے کیا بڑا فتنہ ہے، اور بعد میں پھر جو دوسروں کے ساتھ ہیں وہ تو ہم ڈسکس کریں گے۔ تقریباً میں نے اپنی نوٹ بک میں 20 سے زیادہ فتنے آپ کے لیے جمع کیے ہوئے ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ تک ضرور یہ ساری چیزیں جائیں گی۔ ہم اس کو الگ سے ایک پورا چاہے سیمینار کریں یا کہیں بھی کریں، اللہ کروائے گا، دوں گی۔ لیکن میں پہلے آپ کو ایک شیئرنگ سناتی ہوں جو مجھے ملی، اس کی روشنی میں ہی صرف ایک فتنے پہ بات کر کے آج کے سیشن کو ہم پورا کریں گے، اور یہ باتیں تو چلتی ہی رہیں گی۔ یہ سوچ لیجئے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کو ان چیزوں سے فارغ کر رہے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، علم کے حریص کبھی فارغ نہیں ہوتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اسلاف جو تھے نا، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈگریاں نہیں دیتے تھے، سرٹیفیکیشن جس کو آپ کہتے ہیں، کہتے تھے اگر ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا، ایک تو ان کے اندر تکبر آئے گا، پھر عجب آئے گا، پھر دوسری بات ہے یہ آئیں گے نہیں، یہ سوچ لیں گے اب سرٹیفکیٹ لے لیا تو ختم۔ حالانکہ آج کا اسٹائل بالکل ڈفرینٹ ہو گیا نا، سرٹیفکیشن کی سب سے بڑی سیریمنی ہوتی ہے، یہاں کا اتنا نہیں مجھے پتا، لیکن امریکہ میں اگر آپ دیکھیں تو کسی کی شادی سے زیادہ لوگ اس کی گریجویشن پارٹی پہ آتے ہیں۔ تو مقصد کیا ہے کہ یہ سفر ساتھ ساتھ چلے گا، لیکن بات یہ ہے کہ جب میں اور آپ ان ساری چیزوں کو پڑھتے ہیں کہ ہمارا پیارا نبی کتنا تھا، کیا تھا، کس طریقے سے ان کے ساتھ زندگی کے یہ سارے معاملے ہوئے، تو پھر ہمیں ضرور اس چیز کے اوپر سوچنا ہے کہ آج امت مسلمہ کہاں کھڑی ہے۔ آئیے ایک چھوٹی سی شیئرنگ سنیں، مجھے یقین ہے ہر صاحب درد اس کو پڑھ کے روئے گا، مجھے تو بہت رونا آیا، اور مجھے ایسے لگا کہ شاید یہ آج کے دن کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ سے بھجوایا آپ کے لیے کہ میں اور آپ دیکھیں کہ اس وقت سب سے بڑا فتنہ جو امت مسلمہ کو لاحق ہے وہ فرقہ واریت کا ہے۔ ٹکڑیوں میں بٹی ہوئی امت ہے، پہلے ہی تھوڑے تھے، پہلے ہی کمزور تھے، حب دنیا نے ہمیں اور مشکل میں ڈال دیا، وہن کی بیماریوں کا تم شکار تھے ہی، لیکن جب سے امت فرقوں میں بٹی اس کے بعد تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کہنا چاہیے نا کہ جو قرآن میں آتا ہے کہ تمہاری ہوا بکھر جائے گی، تم اپنے آپ کو دشمنوں کی نظروں میں ہلکا سمجھیں گے۔ سنیے گا، یہ ایک شیئرنگ ہے کسی کی، 1400 سال پرانا اسلام، یہ حنیف سمانہ کی ایک تحریر ہے، کہتے ہیں کہ یہاں وسیم صاحب دنیا سے رخصت ہوئے اور وہاں ان کے گھر میں خانہ جنگی کسی کیفیت پیدا ہو گئی، دونوں بیٹے آمنے سامنے آ گئے، وجہ نہ مکان کا جھگڑا، نہ دکان کا جھگڑا، اور نہ ہی روپے پیسے جائیداد یا خاندان کا جھگڑا۔ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے نا، باپ کے بعد لوگ بہن بھائی اسی جائیدادوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ایسا کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ آپ کہیں گے کہ پھر کاہے کا جھگڑا؟ جھگڑا تھا مسلک کا جھگڑا، فرقے کا جھگڑا، اعتقادات کا جھگڑا، جہالت اور عدم برداشت کا جھگڑا۔ بڑے بیٹے نے کہا نماز جنازہ دیوبندیوں کی مسجد میں ہوگی، چھوٹے بیٹے نے کہا نہیں، بریلویوں کی جو مسجد میں ہوگی۔ خاندان کے کچھ لوگ بڑے بیٹے کی حمایت میں آ گئے اور کچھ چھوٹے کی۔ دور پرے کے رشتے دار اور محلے والے پریشان کہ جلدی فیصلہ کریں، मैयत को ज्यादा देर घर में रखना दुरुस्त नहीं, मगर कोई अपने मौकफ से पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि हम अपने आप को ठीक समझते हैं बस, बाकी सब गलत है। खैर, हम भी अपने प्यारे दोस्त मौलवी के साथ तदफीन में हाजिर थे। हमने मौलवी के कान में आहिस्ता से कहा, अगर इन दोनों में से कोई एक अपने मौकफ से ना हटा तो फिर इस मसले का हल मुझे तो ये नजर आता है कि नमाज जनाजा अहले हदीस की मस्जिद में पढ़ा दी जाए। अब ये इन्होंने अपनी राय दी। मौलवी ने मेरा हाथ दबाते हुए कहा, चुप कर जाओ, अभी ये दोनों भाई एक दूसरे का गिरेबान छोड़कर तुम्हारा पकड़ लेंगे। यानी इस नाम को तो शायद कोई भी ना बर्दाश्त कर ले उनमें से। मैंने आहिस्ता से कहा, यार मौलवी, एक तो मैं मसले का हल बता रहा हूं, मेरा गिरेबान क्यों पकड़ेंगे? मेरे पास तो अभी और बहुत से ऑप्शंस भी मौजूद हैं। मौलवी ने गुस्से से मुझे देखा, मुझे पता है तुम अभी कहोगे चर्च मंदिर वगैरह। मैंने कहा, चर्च मंदिर क्यों कहूंगा, क्या हमारे फिरके और मसले खत्म हो गए हैं क्या? यानी अगर अहले हदीस नहीं अच्छा लगता तो किसी और मसले के पास चले जाते हैं, ये मुराद है। एक खानदान के बुजुर्ग ने दरमियान में मुदाखलत की और बड़े बेटे से पूछा, बेटा तुम्हारे अब्बा कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे? यानी जिंदगी में जिसमें पढ़ते थे चलो उधर ले जाते हैं, ये मुराद है। बड़े बेटे ने कहा, देवबंदियों की। छोटा बेटा फट से बोला, ये झूठ बोलता है, अब्बा बरेलवियों की मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। दोबारा दोनों फरीकों की जानिब से शोर व गुल शुरू हो गया। वो बुजुर्ग कहने लगे, देखो बेटा, अभी अभी तो तुम्हारे अब्बा को कफन पहनाया गया है, अभी तो कफन भी मैला नहीं हुआ और तुम लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया है बजाय मरने वाले की बख्शिश के लिए दुआ करने के, अपनी वालदा और बहनों का सहारा बनने के, इन्हें दिलासा देने के, अपने अपने एतकादात के मोर्चों में घुसकर तुम अपने बाप की रूह को तकलीफ दे रहे हो। तुम्हें तो चाहिए था कि बड़ा भाई कहता कि जो छोटे की मर्जी है वो कर लो, और छोटा कहता नहीं, बड़ा भाई बाप की जगह है, जो वो कहे वो कर लो। इसकी बजाय तुम लोगों ने तो अपने बाप की मैयत को तमाशा बनाया हुआ है। अब मेरी समझ में एक हल आता है, अगर तुम दोनों कबूल करो तो सोचिए जरा क्या हल होगा। आसपास लोग मजमे की सूरत में जमा हो चुके थे। सारे मजमे की नजर इस मोहतरम बुजुर्ग पर जम गई। दोनों भाई भी इनकी तरफ देखने लगे। बड़ा भाई बोला, जी फरमाइए। बुजुर्ग ने छोटे की तरफ देखा, और तुम्हें कबूल है? छोटा कुछ सोचते हुए बोला, आप पहले हल बताएं, यानी ऐसे नहीं एग्री करूंगा, पहले बताएं कि आप करने क्या वाले हैं। बुजुर्ग ने कुछ सोचा और फिर कहने लगे, तुम देवबंदियों की मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ाने के हक में नहीं, और तुम्हारा भाई बरेलवियों की मस्जिद का मना करता है। हम ये करते हैं कि नमाज जनाजा यहीं घर के बाहर सड़क पर पढ़ा लेते हैं। मजमे में से आवाज आई, मगर नमाज पढ़ाएगा कौन, देवबंदी मौलाना या बरेलवी? वो बुजुर्ग कहने लगे, अगर आप लोग मुनासिब समझो तो मैं पढ़ा देता हूं। बड़े भाई ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। छोटे ने सर खुजाते हुए कहा, ठीक तो है, मगर आप कौन से मसलक से हैं? यानी छोटा कुछ ज्यादा ही मसलक परस्त है। बुजुर्ग कुछ परेशान से नजर आए, बेटा मैंने अभी कोई मसलक इख्तियार नहीं किया, शायद मैं अभी तक तुम दोनों जैसा बाशऊर नहीं हुआ। अभी तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1400 साल पुराने इस्लाम को छाती से लगाए हुए चल रहा हूं, पर अब तो उम्र भी ज्यादा ही हो गई है, और इस आखिरी उम्र में कहां मसलक और फिरके समझने और सीखने बैठूंगा। राह चलते चलते जहां नमाज का वक्त हो जाता है, जो भी करीब मस्जिद होती है इसमें चला जाता हूं, देखता भी नहीं हूं कि किसकी है। अब तो अल्लाह से यही दुआ है कि मुझे इस 1400 साल पुराने इस्लाम के साथ ही उठा ले। बुजुर्ग की आंखों में दो आंसू तैर रहे थे। तो आप माने ना माने, मैंने 20 से ज्यादा फितने आपके लिए लिखे हुए हैं। इन सब में इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को जो फितना लाहक है ना, मैं उसको दो पे खत्म करती हूँ। एक आपने सुन लिया, एक तो फिरकाबाजी है। लोग नमाज नहीं पढ़ते, किसी को इतनी फिक्र नहीं है, पढ़ने लग जाए तो ये गम खा जाता है किस तरीके से पढ़ी है। जिंदगी भर नहीं कोई किसी मस्जिद से जुड़ेगा, उसके मरने के बाद जनाजा कहाँ कौन पढ़ाएगा, इसकी फिक्र लग जाती है। आज हम अपने बच्चे गैर मुस्लिमों के हवाले कर देते हैं दिन के कई घंटे, लेकिन हम दूसरे मसलक की जमात की मस्जिद में नहीं भेजते। हमारे गुमान के मुताबिक अगर दूसरे मसलक वाले ने निकाह पढ़ा दिया तो ये निकाह नहीं होगा, ये अल्लाह ना करे कुछ और ही हो गया। बहुत बड़ा फितना है। आज कुरान की इस दावत के रास्ते की रुकावट में कोई बड़ा मुल्क नहीं है, कोई सुपर पावर आपको कुरान पढ़ने से नहीं रोकती। इस वक्त लोगों को कुरान और सुन्नत से रोक रही है तो मसलक रोक रहा है। पहचान क्या है? हर बंदा कहता है मैं ठीक हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा लोगों, यहूद के 71 फिरके हुए, नसारा के 72 यानी 72 हुए, और उम्मत मुस्लिमा के 73 होंगे। इंशाल्लाह इस कोर्स में अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो आपको मैं पिछले सारे डिविएटेड फिरकों का थोड़ा थोड़ा तारुफ ज़रूर कराऊंगी, क्योंकि इस वक्त उम्मत का नासूर बन चुकी है ये चीज़। इस तरह हमारी वाहदत टूटी हुई है कि अल्लाह की पनाह, दुश्मन हमें बाहर देख के हंस रहे हैं, वो तो हमें मुसलमान होने पर मारने को तैयार है। वो तो नहीं पूछते आप सुन्नी हैं, वहाबी हैं, शिया हैं, बरेलवी हैं, क्या है, हमें खुद ही नहीं पता हम क्या है। खुद को हनफी कहने वाले को नहीं पता कि इमाम अबू हनीफा का नाम क्या था, उसको नहीं पता कि उनकी किताब कौन सी थी। मैंने एक दफ़ा एक औरत से ये चंद सवाल किए थे तो कहेंगी मुझे तो इसका एक का भी नहीं पता। तो मैंने कहा फिर आपको हनफी होने का हक नहीं है, मुझे है, क्योंकि मुझे इन सारे सवालों के जवाब अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं। सिर्फ नाम है, समई तुमुहा। कुरान में अल्लाह ने कुफार के बुतों के लिए कहा था ये नामों पे झगड़ते हो तुम, ये गौस ये कुतुब, तुम्हें खुद नहीं पता ये कौन थे। तो लिहाजा फिरका वारियत एक बहुत बड़ा फितना है आज के दौर का। दूसरी चीज जिस पे आज की इस महफिल को पूरा करूंगी, और वो है मकसद हयात का मालूम ना होना। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया था और मुसलमान बनाकर अल्लाह ताला ने हमें खैरा उम्मत में चुना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 13 साल मक्की ज़िंदगी जो अभी हमने पूरी की है, इसका खुलासा क्या निकला? कौम फांजिर। उम्मते मुस्लिमा का मकसद इंजार है, तुम लोगों के अंदर खैर की बात करो, शर से रोको। अगर सारी मस्जिदों और सारे मदरसों और सारे मसलकों वाले अपने सारे इख्तलाफात को एक साइड पे कर दें, ये 13 साल मक्का के, इसको सामने रख लें, आपने लोगों को जमा करके दिखा दिया, यूनाइट होके देख के कुफार की मदद भी की एक आध मौके पे जिसमें इस्लाम की कोई हद नहीं टूटती थी, आपने सोशल वर्क भी किया, आपकी जवानी भी बेदाग थी। आज देखिए लहूलुहाब का जो फितना उम्मत के सर पे मुसल्लत किया हुआ है, आज उम्मत को जो इतना बेकार किया हुआ है कि जिंदगी का एक बेशतर हिस्सा सिर्फ एंटरटेनमेंट के नाम पर हम लगवियात सुनते और सुनते रहते हैं। अल्लाह के नबी इन फितनों का तोड़ क्या करते हैं कि आपने कभी सुना ही नहीं, कोशिश भी की अल्लाह ने सुला दिया। तो जरूरत है कि उम्मत को वो भुला हुआ सबक याद दिलाया जाए। इसका बेस्ट तरीका वो ये जो अल्लाह के नबी ने फिर सहाबा को कहा, डर के सहाबा इकराम, अच्छा अल्लाह के नबी उम्मत मुस्लिमा के 71 फिरके होंगे, और सबसे बढ़ के आपने कहा कि उनमें से एक नाजी होगा निजात पाने वाला, और 70 नारी होंगे आग में जाने वाले। सहाबा को गम लग गया। आपने कहा अल्लाह के नबी मन हम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सा होगा निजात पाने वाला? अच्छा ये हदीस यहां मैं रोक के जरा कमेंट दूं, आज आप जिस मसले के बाद जाएंगे वो कहेगा वो हम है, वो हमारा नाम लिख लो आगे। पहले तो लोग फिरके पे डरते थे ना, अब मस्जिदों के नामों पे फिरके बने हुए हैं। वल्लाही एक मसले की भी दो मस्जिदें आपस में नहीं मिलती। लेकिन अल्लाह के नबी का जवाब क्या था कि वो लोग होंगे मन हम अला उस पे जिस पे अना वासहाबी ही, वो उनकी सोचें उनकी नस्बतें उनका तरीका अल्लाह और उसके नबी सल्लम और सहाबा से जो अपनी नस्बत जोड़ेंगे बस वो होंगे निजात वाले। बात भी यही है, अगर अल्लाह के नबी के बाद कोई फिरका बन सकता था तो अबू बकरी बनता, उमरी बनता, उस्मानी बनता, और इसी तरह से अलवी बनता। ये चार खुलफा राशिदीन को तो सब मानते हैं ना, ये चार छोड़ दीजिए कई 100 साल तक कोई एक फिरका भी नहीं बना। बाद की कीमती शख्सियात जो वाकई काबिले कदर हैं उनके नाम लेके आज उम्मत को तोड़ने वाले आज उम्मत के सबसे बड़े फितना बर्दाश्त हैं। दुआ कीजिए कि मोहब्बतों का पैगाम आम करें। कुरान सुन्नत हमारे लिए काफ़ी है, ना हमें किसी इंसान की बात है ना कुछ, और जो लोग यहाँ आते हैं वो इस बात की गवाही दे सकते हैं। जब से आपने सुनना शुरू किया ना यहाँ आकर किसी उस्ताद का नाम लिया गया कभी, ना किसी इदारे का, ना किसी इमाम का, ना मुफ्ती का, ये सब हमारे मुहसिन हैं। हर इलाके में अल्लाह ने लोगों को आज जैसे चुना हुआ है ना, दुनिया में कितने इस वक्त लीडर्स हैं, कितने मजहबी रहनुमा हैं, ये चारों इमाम अपने दौर की बेहतरीन शख्सियात थी, और ये चारों कहकर गए थे कि हमारे बाद अगर तुम्हें हमारा कोई कॉल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के खिलाफ दिखे तो हमारा कॉल दीवार पर मार देना और हदीस ले लेना। ना उस वक्त प्रिंट मीडिया था, ना ये आपके पीडीएफ्स थे, ना नेट मीडिया था, ना सॉफ्ट कॉपियां थी, ना हार्ड थी। जो इल्म इनको मिलता गया इन्होंने उसके मुताबिक पाइल अप किया, और एक मसलक पे अपने आप को जोड़ने वाले देख लीजिए, किसी एक मसलक में तो पूरे पूरे बाब ही गायब है। आप कहते हैं फिकह हनफी में ए टू जी पूरा इस्लाम है, नहीं, इमाम अबू हनीफा ने कई मौजूदात पे बात ही नहीं की। या इसी जैसे एक उस्ताद, जैसे मैं अपने ऊपर ले लूँ, तो मेरा मिलान अखलाकी मामलात ज्यादा है, घरेलू जिंदगी, शौहर बीवी ससुराली बच्चों की, मैं अपने ऊपर लेती हूँ ये चीज़ कि मुझे घरेलू जिंदगी पे बात करने में मजा आता है, क्योंकि मेरे ऑडियंस ही हैं। मैंने हो सकता है कई मौजूदात पे आज तक दर्स ही ना दिया, सिर्फ कुरान में जहाँ आता है वहाँ पढ़ते हैं, या जो कोई स्टूडेंट्स होते हैं उनको। तो अब इसका अंत है कि आप कल कहें कि जो आपने हमें पढ़ा दिया बस वही दीन है, तो ये फिर आपका मेरे ऊपर रहती होगी। तो ये दुआ करें कि अल्लाह हमें आज इस प्यारे नबी के नक्शे कदम पर चलाए। कभी हिजरत मक्का ना होती, हिजरत मदीना ना होती, अगर नबी सल्लम मक्का वालों से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते। आपकी दावत में इनकलाब था। इस पर इंशाल्लाह मज़ीद बातें हम करते रहेंगे। अल्लाह ताला हमारी कमी कोताहियों को माफ़ करे। रब्बना तकबल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नक अंत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु ताला खैरि खल्किही व असहाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।
صلي على محمد وعلى آل محمد كما صلي